ये आकाशवाणी है। अब आप शशांक कुमार से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के सदस्य देशों से कहा है कि वे संगठित होकर सहयोग के साथ आतंकवाद और आतंकी गतिविधियों को धन उपलब्ध कराने वालों के साथ सख्ती से निपटें। उन्होंने कहा है कि इस गंभीर मुद्दे पर दोहरे मापदंडों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को कट्टर बनाने वाली ताकतों को रोकने के लिए सक्रियता से काम करना होगा। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में विचाराधीन अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौते के मुद्दे पर काम करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सुरक्षित बनाने के लिए वैश्विक दिशा निर्देशों पर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी के इस युग में साइबर सुरक्षा, डीप फेक और गलत सूचनाओं के प्रसार की चुनौतियों को देखते हुए लोगों को ब्रिक्स से बहुत उम्मीदें हैं।
इस साल ब्रिक्स देशों में यूनिडो के साथ मिलकर इंडस्ट्री 4.0 के लिए स्किल वर्कफोर्स तैयार करने पर बनी सहमति बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2022 में लॉन्च किया गया ब्रिक्स वैक्सीन R&D सेंटर सभी देशों की स्वास्थ्य सुरक्षा बढ़ाने में मदद कर रहा है। हमें डिजिटल हेल्थ में भारत का सफल अनुभव ब्रिक्स पार्टनर्स के साथ साझा करने में खुशी होगी।
झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल ने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। झारखंड में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को और जबकि दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा। मतगणना 23 नवंबर को महाराष्ट्र के साथ होगी। उधर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना ने 45 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कोपरी 5 पाखड़ी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। इस बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी 45 उम्मीदवारों की दूसरी सूची की घोषणा कर दी है। MNS प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे माहिम से मैदान में उतर रहे हैं। वो शिवसेना के वर्तमान विधायक सदा सरवर के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। उधर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी 38 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बारामती निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री अजीत पवार और छगन भुजबल येवला से चुनाव लड़ेंगे। केरल में कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने आज वायनाड संसदीय क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। यहां 13 नवंबर को चिलकारा आरक्षित और पलक्कड़ विधानसभा क्षेत्रों के साथ उपचुनाव होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि वायु गुणवत्ता प्रबंध आयोग अधिनियम ने पराली जलाने पर सजा संबंधी प्रावधान का पालन नहीं किया जा रहा है। न्यायालय ने आज कहा कि यह अधिनियम कानून के पालन के लिए अपेक्षित तंत्र बनाए बिना लागू किया गया है। केंद्र सरकार ने न्यायालय को आश्वस्त किया कि 10 दिन के अंदर नियम तय कर लिए जाएंगे और अधिनियम को पूरी तरह से प्रभावी किया जाएगा। इधर दिल्ली में वायु गुणवत्ता अब भी बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में दोपहर 12 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 367 दर्ज किया गया। दिल्ली में आज सुबह धुंध की मोटी परत थी। गंभीर चक्रवाती तूफान दाना कल देर रात या शुक्रवार तड़के ओडिशा के तटवर्ती क्षेत्रों के भीतरकनिका और धामरा के बीच दस्तक दे सकता है। इस दौरान 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग ने बताया है कि पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी पर बन रहा हवा के कम दबाव का क्षेत्र आज सुबह तेज चक्रवात में बदल गया और इसके कल तक और सघन होकर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की आशंका है। इस बीच भारतीय तटरक्षक ने चक्रवात से पहले जान माल के नुकसान से बचाने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। जर्मनी ने हॉकी श्रृंखला के पहले मैच में भारत को 2-0 से हरा दिया है। नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में वर्तमान विश्व चैंपियन और पेरिस ओलंपिक की रजत पदक विजेता जर्मनी की टीम ने भारत को कोई मौका नहीं दिया। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में टीम इंडिया श्रृंखला में जर्मनी के साथ 2 मैच खेलेगी। उधर मलेशिया में सुल्तान जोहोर कप में जूनियर भारतीय हॉकी टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने 3-0 की बढ़त बना ली है। भारतीय टीम पहले 3 मैच जीतकर अंक तालिका में 9 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।